Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Deranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
आप लोग सुन रहे थे श्वेताश्वतर उपनिषद का तीसरा अध्याय, दसवां मंत्र तक आप लोग सुने हुए हैं। आज आप लोग तीसरे अध्याय का ग्यारहवां मंत्र सुनेंगे, उच्चारण हम लोग करेंगे। देखिए, सर्वानन शिरो ग्रीव सर्वभूत गुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः। एक ही बार उच्चारण हो जाएगा ना? अच्छा, सर्वानन शिरो ग्रीवः सर्वभूत गुहाशयः सर्वव्यापी स भगवांस तस्मात् सर्वगतः शिवः। इदानीं तस्यैव सर्व आत्मत्वं दर्शयति। श्रुति कह रही है, पूर्व में जिसका वर्णन सुन चुके हैं उसी का सर्वात्मकता, सर्वगतत्व आदि आप लोग सुनेंगे। श्रुति माता अधिकारी पूर्व में ये बताई, जो कारण ब्रह्म है, कारण ब्रह्म से भी परे जो कारण है वो परमात्मा है, सच्चिदानंद है। उत्तर का अर्थ है कि कारण के बाद में जो अवशेष रहने वाला कारण, जैसा अवशेष बोलते हैं ना, सब कुछ लय होने के बाद में भी जो अवशेष रहता है उसको बोलते हैं उत्तरोत्तर मन श्रेष्ठ। कारण ब्रह्म है या हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ के से भी जो श्रेष्ठ, जो उत्तम है वह परब्रह्म है। और उस परब्रह्म को पूर्व श्रुति में कहा तत्, वो परब्रह्म कैसा है? अरूपम। अरूपम बोलने पर ये संसार जैसा नाम और रूप वाला है, उस प्रकार वह परब्रह्म नाम और रूप इन दोनों से रहित है। जैसे निर्गुण, निर्गुण जो सच्चिदानंद है, तद कार्य ब्रह्म वाला तो हिरण्यगर्भ सब पता ही चल रहे हैं, सूत्रात्मा है, लेकिन उससे जो पर श्रेष्ठ है उसमें किसी प्रकार का नाम रूप का लेश नहीं है। नाम रूप का लेश तब आता है, वह सगुण त्रिगुणात्मक माया से विशिष्ट होता है। तब त्रिगुणात्मक माया से विशिष्ट होने वाला कारण ब्रह्म है, हिरण्यगर्भ है, उसकी प्रतीति होती है, उसी के रूप आदि होते हैं। लेकिन जो उससे भी उत्तर है, उसका भी जो कारण है उसका रूप नहीं है, क्योंकि वह निर्गुण है। उसी को कबीरदास महाराज जी बोलते हैं अपने एक पद में, एक लाइन, रंग नहीं रूप नहीं नहीं वर्ण छाया निर्गुण निराकार तू रघुराया। रंग नहीं रूप नहीं नहीं वर्ण छाया निर्गुण निराकार तू रघुराया। कबीरदास जी महाराज सगुण का भी वर्णन करते हैं और निर्गुण का भी वर्णन करते हैं। सगुण का यहां हिरण्यगर्भ जो विराट दिखाई दे रहा है उसका वर्णन हम लोग करने की जरूरत नहीं, दिखाई देता है, और जितने भी रूप है वो सब एक प्रकार के विराट सगुण के ही है। लेकिन उससे भी जो श्रेष्ठ है, जो अवशेष है, उसका नाम सगुण का, हिरण्यगर्भ का लय होने पर भी जो उत्तर कारण रूप से रहता है वह अरूप है। और उसी को पूर्व श्रुति में कहा कि वह अनामय है। अनामय न आमय इति अनामय, न अश्व इति अनाश्व, नहीं समास, बोलते हैं ना अश्व मने घोड़ा, और गधे को बोल दिया क्या ये अनाश्व है, मतलब ये घोड़ा नहीं है, नहीं समास बोलते हैं। तो पहला आमय, आमय का अर्थ होता है कच्चा, कच्चा कहिए, अविद्या कहिए, दोष कहिए, रोग कहिए, ये सब आमय का नाम है। फिर न आमय इति अनामय, मैं निरोगी, दुख रहित, अविद्या रहित, दोष रहित, ये हो गया अनामय। तो अविद्या, रूप, नाम, ये सब एक प्रकार से त्रिगुणात्मक होने से रोग युक्त, दोष युक्त है, लेकिन वह ब्रह्म अमय भी है, पूर्व में बताया। ऐसे को जो जानते हैं वे अमृत होते हैं, अमृत अपने सच्चित आनंद स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, ये पूर्व में बताया था। उसी को बोलते हैं उसकी अब सर्वात्मकता, जो जिसका नाम नहीं है, रूप नहीं है, अनामय है, वो कैसा है, विराट, सर्वात्मकता, माने उसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं। तो कोई कार्य और कारण इनमें भेद हो सकता है, पूर्व में कहा एक कारण ब्रह्म है और वह श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ तर जो उससे भी पर है वो पर ब्रह्म है, तो दो हो गए, एक कारण ब्रह्म और उसका भी कारण, हिरण्यगर्भ का जो कारण वो श्रेष्ठ तर हो गया, तो दोनों में भेद हो गया। तो भेद होने के बाद में वो अलग है, ये अलग है, मैंने हिरण्यगर्भ कारण ब्रह्म अलग है और उससे श्रेष्ठ तर जो है परब्रह्म वो अलग है, दोनों में भेद पता, भेद की प्रतीति हो सकती है। तो उस भेद की प्रतीति को निराकरण करने के लिए सर्वात्मकता, मैंने सब वही है, चाहे कारण ब्रह्म हो चाहे कार्य ब्रह्म हो, सर्वत्र वही है, उसी को बताने के लिए यह श्लोक है। तो ये सर्व आनंद शिरोग्रीव वह परमात्मा कैसे है, सर्व भाष्य में बोला आनंद मने मुख है, शिर मने ये अपने जितने भी शिर है, ग्रीव है जैसे सहस्त्र शिर का पूर्व आदि हो सकता है, पूर्व में गया हो या आगे आने वाला हो, या जैसे 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाया गया है वो सब उसी का है, जितने भी रूप दिखाए दे रहे एक ही के है। तो सर्व आनंद है, सब मुख उसी के है, सब सिर उसी के हैं, ग्रीवा मनी सब गले उसी के हैं, अर्थात जो कुछ दिखाई दे रहे ये अवयव बताए, ये सब अवयव से वह प्रतीत होने योग्य, जितने भी अवयव दिखाई दे रहे उसी के हैं, सर्व आज सर्व पर, इसलिए सर्वात्मकता श्रुति बताए ना, तो इदानीम तस्व सर्व आत्मत्वम दर्शयति, मूल में इतनी पंक्ति है कि उसी के लिए ये बता रहा है। भूमिका कितनी है, तस्यैव, तस्यैव मने जो दसवें में बताया, जो कारण ब्रह्म से श्रेष्ठ है, अरूप है, अनामय है, वह कैसा है, क्या उसमें भेद हो सकता है, क्योंकि वहां तर और तम प्रत्यय लगा, तर गुड बेटर जैसे जो भेद हो गए, तो क्या उसमें भेद हो सकता है, भेद तब हो सकता कि वास्तविक दो होते, तो सभी रूप में वही है, सर्वात्मकता उसी के है, ये बताने के लिए है, मतलब भेद की, भेद का निवारण करने के लिए श्रुति बता रहे, किसी प्रकार का कारण ब्रह्म मन हिरण्यगर्भ कारण है और उससे भी जो श्रेष्ठतर पर ब्रह्म है उसमें किसी प्रकार का भेद है क्या, नहीं, जो बताया गया उस श्रुति से वह सब जगह है, ये बताने के लिए है कि सब मुख उसी के है, सब शिर उसी के है, सब ग्रीवा मनी सब गले उसी के है, और वह कहां रहता है, सर्व भूत गुहा शय। अब ये सर्व आनंद शीर ग्रीव ये शरीर हो गए ना, ये सब शरीर हो गए, तो शरीर बोलने पर वो क्या शरीर ही हो सकता है क्या, नहीं नहीं नहीं, शरीर का निवारण करने के लिए सर्वभूत गुहा से, मैंने ये सब शरीर के अवयव बताया है, तो क्या वो सब शरीर रूप है क्या, जैसे बताया कि सब मुख उसी के है, सब सिर उसी के है, तब सब गले उसी के है, तो क्या वो सभी के शरीर रूप हो सकता है क्या, ऐसा एक प्रश्न हो सकता है। तब उस प्रश्न का निवारण करने के लिए मूल में श्रुति बोलते है कि नहीं नहीं, वह सर्वभूत गुहा से, मैंने सर्व भूत गुहा से बोलने पर वो भीतर गए, मैंने बाहर शरीर का निवारण हो गया। शरीर का निवारण होने के बाद में जो सर्वभूत गुहा बुद्धि रूपी गुफा कहिए तो उसमें है, भाष्य में वो आएगा स्वयं। और वो कैसे हैं? सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी किसी प्रकार का शरीर, किसी प्रकार की परिचिन्नता हो सकती है, उस परिचिन्नता को सर्वव्यापी न बोलते। केवल सर्वभूत गुहा से ही है क्या? तो नहीं, वो सर्वव्यापी, सर्वत्र कहीं पर भी उसकी परिचिन्नता आप बता नहीं सकते हैं। ये बताएं, वह भगवान स भगवान तस्मा सर्वगतः, और वे ब्रह्म, इतने विशेषण दे दिया, सर्व आनन शिरो गृह सर्वभूत गुहाशय सर्वव्यापी, ये तीन विशेषणों से युक्त होने से, तस्मात इन तीन विशेषणों से युक्त होने से, वह शिव, वो मंगलमय कल्याण करने वाला परमात्मा कैसे है? सर्वगत है, अर्थात व्याप्य व्यापक भाव कहीं पर भी आप दिखा नहीं सकते। जैसे व्याप्य व्यापक भाव, अभी हम लोग व्याप्य है और व्यापक कौन है? ये प्रेमपुरी आश्रम या ये हाल, अभी इस समय हम बैठे हुए यहाँ, तो हम क्या है? व्याप्य है, मतलब परिचिन्न है, व्याप्य है। किससे? इतने जगह से, इतने जगह से हम कैसे हैं? व्याप्य है, और ये जगह हमारा व्यापक है। तो ये सब विशेषण दे दिया, इससे कहीं व्याप्य व्यापक भाव तो नहीं आएगा उसमें? तो व्याप्य व्यापक भाव न आ जाए तो उसके लिए अंतिम विशेषण दे दिया, वह परमात्मा कैसा है? सर्वगत। अब सर्वगत बोलने के बाद, सर्वगत बोलने पर व्याप्य व्यापक भाव नहीं आएगा ना, एक जगह पे रहने पर व्याप्य व्यापक भाव आएगा। व्याप्य माने थोड़े देश में रहने वाला, और व्यापक माने उसको घेरने वाला। जैसे ये कपड़ा है, ये कपड़ा मेरे शरीर को घेरा हुआ है, तो ये व्यापक हो गया, इससे मैं घिरा हुआ हूं, मेरा शरीर इस वस्त्र से घिरा हुआ है, तो शरीर हो गया व्याप्य और ये वस्त्र हो गया व्यापक हो गया। इसी प्रकार इतने विशेषणों से युक्त जो हुआ है, तो क्या उसमें परिचिन्न, परिचिन्न मतलब वो घिर गया है और कोई घिरने वाला है क्या? व्याप्य व्यापक भाव हो सकता है क्या? तो उसके लिए श्रुति बोलते हैं कि नहीं, वो सर्वगत है। अब भाष्य में देखिए, सर्व आनन इति, सर्वाणी आननानी, सर्वाणी शिरांसी, सर्वाणी गृहश्च, सर्वाणी सबको दीजिएगा, सर्व विशेषण दीजिएगा, और जिसके हैं, मत तीन आए ना, आनन आननानी शिरांसी गृवाहा, तीन अवयव बताए। ये सब तीन प्रकार के आनन, सर्वाणी आननानी मानी सभी के मुख हो गए, सर्वाणी शिरांसी सभी के सिर हो गए, सर्वाणी ग्रीवाहा सभी के गले हो गए, है जिसके ये सभी के मुख, सभी के सिर, सभी के गले, है जिसके, उसको क्या बोलते हैं? सर्व आनन शिरो ग्रीवाहा। एक द्वंद्व समास बनाकर, इतरे इतर द्वंद्व समास कर देते हैं, मैंने समास करके ये बताते हैं, सर्वेषां भूतानां गुहायां बुद्धो सेते इति सर्वभूत गुहाशय। फिर दूसरा विशेषण आ गया, पहला विशेषण तो हो गया सर्व आनन शिरो ग्रीवः, ये विशेषण बता दिया कि सबके मुख, सबके सिर, सबके गले जिसके है वह परमात्मा सर्व आनन शिरो ग्रीवः है। अब दूसरा विशेषण है सर्वभूत गुहाशय, तो उसका अर्थ करते हैं भाष्यकार, सर्वेषां भूतानां गुहायां, गुहायां का अर्थ कर देते हैं, क्योंकि सर्वेषां मूल सबका हो गया सर्वेषां, और भूत का हो गया भूताना, भूताना, और गुह शब्द है तो गुहायां, अब मूल में गुह शब्द है गुह, तो उसका अर्थ क्या करते हैं? बुद्धो, ये बुद्धो शेते, शेते इति शय मनी शयन करता है, सर्वेषां भूतानां, ये षष्टी षष्टी हो गए, षष्टी का बहुवचन से, मैंने सभी भूतों के, सर्वेषां भूतानां सभी के सभी भूतों के, और गुहायाम ये कौन सी विभक्ति है? सप्तमी, अधिकरण है, अधिकरण है। तो गुहायाम, तो शब्द क्या दे दिया उसका प्रतिशब्द? बुद्धो, गुहायाम बुद्धो, बोल दे बुद्धि में, सप्तमी का अर्थ होता है अधिकरण है, तो में निष्ठा। और षष्ठी का अर्थ है काकी के ना, सर्वेशां भूतानां, मनी सभी भूतों के, सभी भूतों के शब्द आ गए। अब मूल में है गुहा, तो गुहा का सप्तमी कर दिया गुहायाम। अरे गुहायाम मनी क्या, गुफा में क्या कहीं? महात्मा महात्मा गुहायाम तिष्ठति, हिमालय गुहायाम महात्मा तिष्ठति, हिमालय में गुफा के अंदर महात्मा रहते हैं। तो इसी प्रकार जो सभी विशेषणों से युक्त, जो कारण ब्रह्म का सिद्धि श्रेष्ठ है, वो कहीं गुफा में रहता है क्या? तो गुहा मनी गुफा में, गुहायाम तो गुहायाम मनी बुद्धो, बुद्धि रूपी गुफा में शेते, ये अर्थ कर दिया। और विशेषण बन गया सर्वभूत गुहा से, मैंने सर्वभूत गुहा से एक शब्द है, तो उसका भाष्यकार ने अलग अलग शब्दार्थ करके बताया। आगे है सर्व, हाँ सर्वव्यापी। अभी ये बोल, पहला तो सर्वाननादि विशेषण किसके लिए दे दिया? कि शरीर आदि का निवारण करने के लिए दे दिया अपना भूत गुहा से। फिर भूत गुहा से बोलने पर भी उतनी भी परिच्छिन्नता आ जाएगी कहीं किसी की गुफा में आदि, तो उसको निवारण करने के लिए सर्वव्यापी बोल दिया। सर्वव्यापी का अर्थ भी हो जाता है फिर परिच्छिन्न का ही निवारण करने के लिए। और वो भगवान कैसे हैं? स भगवान ऐश्वर्यादि समष्टि युक्तम, जितने षड ऐश्वर्य हैं भगवान किसको बोलते हैं? हाँ जी, हाँ जी, छह गुण यहां लिखा हुआ है श्लोक ही, बहुत सुंदर ये श्लोक विष्णु पुराण का श्लोक है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसाश्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भगयतीर्णः। ये सा अपना ये गुण बोलते हैं, छह गुण जिसमें रहते हैं, इस भक्त को ही बोल दिए गुण, और ये छह गुण जिसमें रहते हैं उसको भगवान बोलते हैं, धन जिसमें है उसको धनवान बोलते हैं। तो इसी प्रकार भगवान में ये पूरे के पूरे समष्टि, जैसे इंद्र में, इंद्र को भी हम भगवान बोलते हैं, इतना है कि अपने कुल देवता को भी हम हमारे क्या बोलते हैं? ये हमारे भगवान है। अपने अपने व्यष्टि जो कुल देवता है उनको हम क्या बोलते हैं? हमारे भगवान है। तो वे हमारे भगवान समष्टि गुणों से युक्त है क्या? है समष्टि ये छह गुणों से युक्त है क्या? अपने जो देवता होती है नहीं, हाँ लेकिन अपने परंपरा के अनुसार मानते हैं, इसलिए हमारे कुल के देवता है, कुल के भगवान है। किंतु यह कारण ब्रह्म का भी श्रेष्ठ, उसका भी कारण पर ब्रह्म है, वो भगवान है, इन गुणों से इन विशेषणों से युक्त है, उसमें समस्त मनी समष्टि गुण मने ये उनके अंदर है। कौन कौन है? तो समग्रस्य ऐश्वर्यस्य, ऐश्वर्य बोलते हैं अरे कितना ऐश्वर्य मनी वैभव, इंद्र का वैभव अलग, रावण का वैभव अलग, बड़े बड़े पूर्व में राजा लोग हो गए उनके वैभव अलग, आज भी वैभवशाली लोग है ही। तो ये वैभव केवल थोड़ा होगा लेकिन समग्र वैभव नहीं होगा। कि बोल दें जैसे शीतला माता है, देवी है, उनको बोल दिया एक ने मुझे बहुत सुंदर घोड़ा चाहिए, तो शीतला माता क्या देगी? हाँ वो क्या बोलेगी? अरे बेटा मैं घरे भी बैठी हूं तो तुम्हें मैं घोड़ा कहां से दूं? था मतलब इसी प्रकार हमारे पास वैभव है तो ये सीमित वैभव है, और भगवान के पास कैसे हैं? समग्र वैभव उन्हीं के पास, वैभव देने वाले क्या अष्ट सिद्धियां हैं, जो अष्ट सिद्धि किसी किसी के पास एक एक सिद्धि रह सकती है, और ये सब इनकी रिद्धि सिद्धि आगे पीछे जितने चाहे उतने घूमने वाली रहती है, और ये वैभव दिखाने वाली सिद्धियां तो होती है। तो ये वैभव दिखाने वाले सिद्धियों का भी ये मालिक है, इसलिए बोलते समग्र ऐश्वर्य उन्हीं का है। धर्मस्य, अब जितने भी समग्र सभी लगाइएगा, अपने पास थोड़ा थोड़ा धर्म हो सकता है, तो सब धर्म उन्हीं के अंदर है। यश माने उन्हीं की कीर्ति विशाल है, अपनी कीर्ति सीमित है। वीर भोग्या वसुंधरा बोलने वाले राजा चले गए काल के गाल में, उनका कोई नाम नहीं लेते। उस समय उनकी कीर्ति कीर्ति फैली थी, लेकिन आज उनकी कीर्ति है क्या? लेकिन भगवान की कीर्ति कभी मिटती है क्या? इसलिए समग्र कीर्ति में सभी के साथ समग्र हम लगा सकते हैं। यश मणि कीर्ति, आज हम लोग बैठे हैं तो भगवान की कीर्ति तो गा रहे हैं। यहां जो बैठे हैं हम लोग क्या गा रहे हैं? हाँ, उन्हीं के गुण गाना ही तो कीर्ति है, उनके गुणानुवाद गाना परमात्मा के, यही कीर्ति है, कोई दूसरी तो कीर्ति नहीं है। समग्र कीर्ति उन्हीं की है। श्रेय, श्रेय मणि लक्ष्मी, अब यह लक्ष्मी बताने कोई जरूरत ही नहीं है। नित्य चरण सेवा करने में रत रहती है माता लक्ष्मी जिनके घर में, तो अपने यहां लक्ष्मी कैसी रहती है? एक हमारे संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के विभाग अध्यक्ष थे वेदांत के, बहुत बड़े पारसनाथ जी, अभी 3 साल हो गए उनका शरीर शांत हो गया। ये लक्ष्मी के ऊपर बोलते थे महात्मा लोगों को, हम लोगों को पढ़ाते समय, भाई लक्ष्मी जो होती है ना, बोलता है कि हमारे पास जो लक्ष्मी आती है वो कैसी होती है? हाँ, उल्लू पर सवार होती है, लेकिन वो दूसरे घर के बिल्ली के समान होती है। मैंने अपने घर की बिल्ली अलग और दूसरे की घर की बिल्ली अलग। अभी आपके पास घर ही नहीं है तो बिल्ली का स्वभाव आप क्या देखेंगे? ये तो देहात में देखा जाता है। दूसरे की घर की बिल्ली जब आती है, क्या खाने के लिए दूध आदि रहते हैं सभी के घरों में, वो पहले देखती है कि इस घर में से निकल के जाने के लिए रास्ता है क्या नहीं?